नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक ऐसी आवाज की मालकिन है जिस आवाज को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको इस आवाज की एक झलक सुना देता हूँ, फिर आप देखिए पहचान पाते हैं या नहीं।
मैं शहर अनजाना हो कहां मैं चली आई हो, कहां था मुझे जाना हो। यहां पे भंवरे वहां पे भंवरे, कहां पे है वो मेरा परवाना। मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो,
दोस्तों धड़कने थाम लीजिए क्योंकि हमारे रूबरू होने जा रही है अपनी सुरीली आवाज से दिलों के तार झनकाने वाली हमारी प्रिय गायिका हेमा सरदेसाई जी। नमस्कार हेमा जी, स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
नमस्ते जी, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, सबको बहुत सारा प्यार।
हेमा जी, हमने सुना है कि आपने एक बहुत ही यंग एज में गाना शुरू कर दिया था, तो ये बताइए कि वो कौन थे आपके परिवार में जिन्होंने सबसे पहले आपके इस टैलेंट को डिस्कवर किया?
मेरे मामा जी थे, मेरे मम्मी के एल्डर ब्रदर। तो उन्होंने मेरा गाना सुन लिया था जब मैं 6 बरस की थी, और वो एक हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर में सुना था। उनकी कोई फंक्शन था उनके घर में, तो सारे बच्चे गा रहे थे एक एक गाना, मैंने भी गाया था। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, उनका बहुत कला है आपकी मतलब हेमा में, और यू शुड मतलब उसको ट्रेनिंग देना चाहिए क्योंकि वो बड़ी बहुत बड़ी सिंगर बन सकती है।
ओके, यानी कि कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड आपके परिवार से इससे पहले नहीं था, तो ऐसा हुआ कि आपके मामा जी के बोलने के बाद आपके परिवार वालों ने आपके टैलेंट को सीरियसली लेना शुरू किया, ठीक?
हाँ जी, मेरे मामा जी ने ही नहीं बोला, मेरी जो टीचर थी जो सिंगिंग सिखाती थी हमें स्कूल में, उन्होंने भी मेरे पिताजी को बोला था कि यू नो यू शुड ट्रेन हर कि ये बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। मेरे परिवार में कोई संगीत में ऐसे जाने माने कलाकार या ऐसा कोई नहीं था। मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, मेरे पापा जी भी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन कभी पब्लिकली कभी नहीं गाया उन्होंने। और मेरे डैडी डॉक्टर हैं, फेमस पुलिस सर्जन ऑफ गोवा, और मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ, और मेरी बहन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरे हस्बैंड स्टॉक्स फाइनेंस में डील करते हैं।
ओके, तो उसके बाद फिर क्या आपने कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ली संगीत की, पारंपरिक शिक्षा जैसे कहते हैं?
बिल्कुल, मैंने शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग ली, और 13-14 बरस की थी तब से, और मैंने गांधर्व महाविद्यालय से विशारद की विशारद पा लिया।
वाव हेमा जी, एक्चुअली हम आपका एक जो गायन है उसमें हम एक चुलबुला अंदाज अधिक महसूस करते हैं, तो कभी शायद सुना नहीं कि आपने कोई क्लासिकल बेस गाना भी शायद गाया हो, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक बंदिश सुना सकते हैं प्लीज?
मैं मतलब सारे जो राग थे वगैरह वो भी सब गाती थी, कई ठुमरियाँ गाती थी, लेकिन अभी के लिए मुझे जो क्लासिकल बेस्ड जो एक गाना जो बहुत पसंद आता था लोगों को मेरा, एक दो गाने हैं जो मराठी, जो हम मैं गोवा की हूँ लेकिन यहाँ पे भी मराठी जो है ड्रामा नाटक जो है, पहले जो पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के टाइम में होते थे वो गाने बहुत मशहूर हैं, तो उनमें से एक गाना मैं पेश करूंगी, एक दो गाना, एक है मद जाऊं कुणाला शरण करील सो हरण संकटाचे मी धरिन शरण त्याचे सखये बाई गा बाई गा। एक वो है और एक वो भी गाती थी मैं, जोहार माय बाप जोहार, ये भी गाती थी। रैन बिना मोरे शाम शाम, रैन बिना मोरे शाम, ओ तेरी याद सताए, ओ शाम शाम, रैन भी ना मोरे शाम।
क्या बात है हेमा जी, इतना कमाल का गायन आपका। दोस्तों, हेमा सरदेसाई जी का एक ये अंदाज भी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और आप ये सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। आप हैं मेरे साथ कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में, और हम ढेर सारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं हेमा जी के साथ। हेमा जी, आपने अपने संगीत का कैरियर एक ऐसे दौर में शुरू किया था जब इंडी पॉप म्यूजिक अपने चरम पर हुआ करता था। आपके बहुत से समकालीन गायक जैसे सोनू निगम, मिका, अभिजीत, शान, ये सब आज भी सक्रिय हैं, तो उस दौर के बारे में कुछ बताइए। कितना आसान या कितना मुश्किल रहा वो दौर, शुरुआती दौर आपके लिए?
जो भी शख्स उसूलों के आधार पर, या फिर जो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, इस आधार पर चलता है जिंदगी में, उसको तकलीफें थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं कुछ भी पाने के लिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि जो मैं संगीत को हमेशा एक देन मानती हूँ भगवान की, और उस खुदा की देन के को मैं कैसे भी नीचे, मतलब उस खुदा की देन को नीचे गिराना किसी भी तरह से मुझे मंजूर नहीं था और नहीं है। और दूसरी बात है कि एक औरत होने के नाते औरत को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा देना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और हमारी इंडस्ट्री में, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है दुनिया में, औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से बहुत मतलब बहुत लोग हैं ऐसे देखने वाले। तो ये मेरे साथ भी हुआ इंडस्ट्री में, और जो जो भी मतलब हासिल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इच्छा, भगवान की इच्छा थी कि वो हासिल हो जाए वो, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रगल करनी है, करनी थी मुझे इंडस्ट्री में, और कर ली मैंने। हर स्टूडियो से वॉकआउट्स कर लिए थे स्टार्टिंग में, बहुत तकलीफें सही कि सही मैंने कि मैं कुछ भी मतलब गलत ना करके अगर कुछ भी पाना है मेरे संगीत में, सबके पास मेरी आवाज़ पहुंचानी है, तो अच्छे तरीके से जो खुदा का तरीका है वही अपना के करूँगी। और ऐसे ही खुदा के जो भगवान का साथ रहा तो मैं थोड़े थोड़ा बहुत कर पाई इन सब ग्रेट सिंगर्स के साथ, सोनू निगम जी, शान जी, के जी, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सबके साथ गाने का मौका मिला। और सब गाने मेरे, जो भी 60 से ज़्यादा गाने हैं भगवान ने सुपर हिट किए, और जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया सबसे बड़ा रहमान जी हमारे, जो सबसे अच्छे और डिसेंट जो है म्यूज़िक डायरेक्टर जाने माने। तो वहीं से पता चलता है कि उसूलों पे चलते चलते भगवान ने सही रास्ता दिखाया भी, और मुझे सही रास्ते पे ही आके मुझे सही रास्ते पे लाया, और जो भी दिया सुपर हिट ही किया।
जी हेमा जी, और रहमान जी के साथ ही आपने कोलैबोरेट किया उस खूबसूरत गीत के लिए जिसके शब्द शब्द में और सुर सुर में संगीत है, इतना प्यारा इतना मधुर गीत जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं, इतना सदाबहार गीत। हेमा जी, हम इसी गीत को सुनेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें बताइए कि इस गीत की कुछ मेकिंग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताइए हमें प्लीज।
जब फोन आया था रहमान जी का तो मैं स्टिल स्ट्रगल कर रही थी मेरे करियर में और बहुत सारे वॉकआउट्स कर चुकी थी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज से, तो थोड़ी निराश थी। लेकिन सच नहीं लगा जब भी फ़ोन आया उनके सेक्रेटरी नोएल का, सच नहीं लगा कि मुझे चेन्नई जाना है रिकॉर्डिंग के लिए। और जब तक मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंची तब तक मुझे ऐसा लगा कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। लेकिन खुदा का जो जब खुदा चाहता है कि कुछ हो जाए तो वो होना, मतलब होना ही है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो जब मैं रहमान जी के पास पहुंची स्टूडियो में तो मुझे मतलब आई कुड नॉट बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ कि मैं रहमान जी के सामने खड़ी हूँ उनके स्टूडियो में। उन्होंने गाना दिया, मैंने सुना रात भर गाना, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग था और जावेद अख्तर जी ने लिखा था गाना आवारा भवरे। तो मैं सबसे मिली राजीव मेनन जी जो डायरेक्टर थे सपने मूवी के, सपने फिल्म के, तो उन्होंने भी रेकमेंड किया था मेरा नाम रहमान जी से। तो मैंने गाना गाया और बहुत सारे तरीकों में मुझसे गवाया रहमान जी ने गाना। और जब मैं बाहर आई स्टूडियो से तो जावेद जी ने, सबने सुना गाना, राजीव जी मेनन जी ने, सबने बहुत तारीफ की, लेकिन रहमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो मैं उनके पास गई, बोले सर हाउ डिड आई सिंग, मैंने कैसे गाया गाना। तो बोले गॉड इज़ ग्रेट। तो उन्होंने सब कुछ बोल दिया उसमें कि जो चुना गया होता है कि खुदा का काम करने के लिए, उसे आवाज़ खुदा देता है, खुदा खुद ही देखता है कि वो आवाज़ जहाँ पहुँचनी है पहुँच जाए।
तो फिर हेमा जी, आप हमारे साथ हैं और ये गाना अपने श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपकी आवाज में भी थोड़ा सा हो जाए।
आवारा भवरे जो हल्ले हल्ले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर के छाए जाए,
हाँ।
अच्छा हेमा जी, आपकी आवाज में एक स्वाभाविक खनक है जो इस गीत को और इस जैसे सैकड़ों गीतों को एक अलग मुकाम दे देती है। आपकी आवाज श्रोताओं तक पहुंचती है और उन्हें एक नई उमंग से भर देती है। पर इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में भी एक गजब की पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। हमें यकीन है कि जब आप स्टूडियो में होती होंगी तो स्टूडियो का माहौल कुछ अलग ही ताजगी भरा रहता होगा, है ना?
शायद थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हैं। हाँ, मुझे बहुत प्यार से वो बबली कहते हैं, बहुत चुलबुली कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन इसकी एक वजह होनी चाहिए। मेरे जो गुरु हैं, मतलब मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो भी लोग बोलते कि हेमा की एनर्जी ऐसी है, स्टेज पे भी बोलते कि जब हेमा गाती है एक एनर्जी होती है, हर एक शख्स बोलता है एक एनर्जी है हेमा के इर्द गिर्द। तो ये एनर्जी मुझे लगता है मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनका प्यार है। और अगर मैंने कोई पुण्य किया हो जिंदगी में तो उनकी देन है। तो इसके लिए दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु से। और मेरे गुरुदेव जब भी मुझे प्यार की नज़र से देखते हैं तो लगता है कि मतलब दुनिया में आई तो ये प्यार अगर मैंने पाया है मेरे गुरुदेव का, तो सब कुछ पा लिया।
जी हेमा जी, अच्छा आपने इतने सारे संगीतकारों के साथ काम किया, मतलब नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अनु मलिक, रहमान साहब, और अभी जो रिसेंटली अगर हम कहें तो प्रीतम, विशाल भारद्वाज, सलीम सुलेमान, तो इतने सारे संगीतकारों के बीच आप ये बताइए कि अलग-अलग अनुभव आपके रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो हैं वो कौन रहे आपकी नज़र में, और किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर पाए हैं, मतलब थोड़ा सा ही बताइए।
नहीं, सबके साथ मतलब मुझे ठीक लगा। ओनली बिकॉज मुझसे जब हेमा की बारी आती थी तो सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, मेरा बहुत आदर किया है। जब एक बार अनु जी ने मुझे जंगल है आधी रात है जो BB No. 1 का गाने के लिए बोला था, तो मैंने हेमा सरदेसाई जैसे गाएगी वैसे गाना गाया, तो बहुत गुस्सा हुए मुझ पे, बोले कि ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आपने अनु मलिक स्टाइल में नहीं गाया। तो मैंने कहा जी विथ फुल मतलब कम्प्लीटली जो है नम्रता से मैंने उन्हें कहा कि आप जैसे बोलेंगे मैं गाने के लिए तैयार हूँ। तो पूरा गाना उन्होंने अपने तरीके से, जैसे अनु मलिक जी के तरीके से गा के मुझे सुनाया वापस और सिखाया, और मैं 2 मिनट में वापस माइक पे गई और फिर मैंने उनके तरीके से गाया। तो आज तक वो बोलते हैं कि वो उनका फेवरेट गाना है हेमा का। बहुत खुश हुए मेरे गाने के बाद वो गाना। तो पहले मैंने जैसे हेमा सरदेसाई की स्टाइल में गाया था, वो था जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, और उन्होंने जो सिखाया अपनी स्टाइल में अनु मलिक जी के स्टाइल में वो था जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। तो ऐसा था। तो ऐसे बहुत किस्से हैं बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता था कि उन्होंने उनको मालूम था कि हेमा की माइंड क्या है, कि हेमा आदर के बिना मतलब जो आदर है उनके लिए, हेमा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आदर मुझे हमेशा मिला। तो जब तक मुझे वो आदर मिला वो म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छे थे। तो ऐसी बात है।
जी, बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। और इसी तरह चक दे इंडिया का जो गाना था बादल पे पाँव है, वो भी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था, और बहुत लोगों ने नोट किया कि एक बहुत दिनों बाद उन्हें हेमा जी की आवाज़ में वो पुरानी खनक दोबारा सुनाई पड़ी है। तो ये गाना, थोड़ा इस गाने के भी बारे में बताइए कि इसकी मेकिंग के बारे में कि कैसा सलीम सुलेमान के साथ आपका ये एक्सपीरियंस रहा?
सुलेमान जी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा पहले रिकॉर्डिंग किया था एक एल्बम में, और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब जानती थी, सलीम जी को, सुलेमान जी को, और वो हमारे मतलब दोस्त कहलाते थे मेरे हस्बैंड के और मेरे। और जब भी वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बने तो मेरा मतलब उनके साथ गाना हुआ ही नहीं, बहुत सारे फिल्म्स हुए थे उनके तभी एज म्यूज़िक डायरेक्टर्स। लेकिन मेरे ख्याल से जब शिमी तमीन जी ने, जो डायरेक्टर हैं चक दे इंडिया के, उनको बोला कि हेमा सरदेसाई से गवाना है ये गाना, तो तभी उनका फ़ोन आया था सलीम जी का कि हेमा, सो आई एम सो हैप्पी, आई एम गोना वर्क विथ यू, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ काम करेंगे, हम अभी ये गाना गाएंगे, गवाएंगे। तो फिर मैं भी बहुत खुश थी कि मेरे दोस्तों के साथ मैं अभी गाऊंगी, और फिर मैंने वहाँ जाके बादल पे पाँव गाया, और बस।
अच्छा हेमा जी, आपने एक अनूठा रिकॉर्ड भी कायम किया है। आपने शाहरुख खान के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, गोविंदा जी के साथ और शायद नसीर साहब के साथ भी गाना गाया है, और ये एक एक पार्श्व गायिका के लिए शायद अनूठा रिकॉर्ड ही होगा कि इतने सारे मेल एक्टरों के साथ उन्होंने डुएट गाए हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका?
ये तो अगेन ये सब सुपरस्टार्स हैं। मैंने इवन हम आपके दिल में रहते हैं इस मूवी में अनिल कपूर जी के साथ भी गाया है, तो ये खुदा की देन है। भगवान ने सोचा कि ये लड़की ने इन बड़े शख्सों के साथ गाना गाना चाहिए, तो वो उनकी मर्जी जो हुआ। और मेरा काम है कि मैं मेरे गुरु गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव जो हैं श्री श्री, और जिस रास्ते पे मेरे गुरुदेव ने मुझे रखा, मतलब जिस रास्ता, जो रास्ता दिखाया है मेरे गुरुदेव ने मुझे, जो खुदा की तरफ जाता है, वो रास्ते पे मुझे लाने के लिए बस शुक्रगुजार हूँ दिल से, मन से और रूह से, जस्ट वेरी ग्रेटफुल। बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, दिल में सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद, धन्यवाद ही है।
जी हेमा जी, वैसे तो आपकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है, मतलब आपकी जैसी आवाज़ है जो शायद पहले कभी नहीं आई और आगे भी शायद हम इस तरह की आवाज़ का, इस तरह की टोन को शायद नहीं सुने कभी। तो लेकिन इसके बावजूद भी हर गायक गायिका का एक कुछ प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो आप बताइए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से या इससे बाहर वो कौन से गायक गायिका हैं जिन्हें आप अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं?
मैंने स्कूल में जो है वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा था, और फिर मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आगे जाके सीखा, जो मैंने ऑलरेडी मैं बोल बोला है मैंने यहाँ पे आपके बढ़िया शो पे। तो फिर ऐसा है कि जो वेस्टर्न म्यूज़िक था उसमें बाबरा स्ट्राइसेंड, विटनी ह्यूस्टन और आगे चल के सेलिन डियोन वगैरह, मुझे बहुत मतलब उनसे प्रेरणा मिली गाने के लिए। और जो हमारे अपने इंडियन सिंगर्स थे तो नेचुरली लता जी, आशा जी, और बहुत सारे जो जैसे किशोर कुमार जी वगैरह जो सिंगर्स, देखे किशोर कुमार जी के आवाज़ में ऑलवेज वो बहुत मतलब चुलबुलापन था, और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत दर्द था, तो जो भी गाते थे बहुत दिल से वो पहुंचता था। तो ये सब चीज़ें शायद मैंने अपने आप में जैसे अपने आप को ऐसे अपने तरीके से सिखाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरी माँ, मेरे डैडी, मेरी बहन जो मेरी बड़ी बहन, उन्होंने स्ट्रेस किया हमेशा वेरी स्ट्रांगली कि आप ओरिजिनल रहो, आप किसी को इमिटेट ना करो, आपकी आवाज़, आपका अंदाज़, आपका गाने का तरीका हमेशा ओरिजिनल, एक अपने डिफरेंट और अलग होना चाहिए, और कभी किसी को कॉपी ना करो। इसीलिए शायद आपने ये प्रश्न पूछा, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा है ऑल्सो कि ये सब भगवान की ही देन होती है।
जी हेमा जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि आपकी आवाज़ में अभी ऐसे बहुत सारे शेड्स हैं जो श्रोताओं तक पहुंचने बाकी हैं, और फिल्मी पार्श्व गायन के लिमिटेड स्कोप में शायद ये संभव भी नहीं हो पाए। आप खुद भी गीतों को कंपोज करती हैं, तो क्यों नहीं कुछ आप नई एल्बम्स प्लान करती हैं? हम लोग यानी कि हमारे श्रोता अपनी हिंदुस्तानी गुड़िया को बहुत मिस करते हैं।
आओ, दैट्स सो क्यूट, थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत खुश कर दिया मुझे। मैं सब श्रोताओं को बहुत सारा प्यार मेरे दिल से, और आपको भी बहुत सारा प्यार। और हाँ, मैं ज़रूर कंपोज कर रही हूँ। अभी मैं एक जो इंटरनेशनल एल्बम कर रही हूँ, लेकिन वो हमारे इंडियन जो चांट्स है, डिवाइन चांट्स, उसपे मतलब वेस्टर्न तरीके से उस पे म्यूजिक करूँगी, कर रही हूँ। तो बस आपको ज़रूर भेजूँगी सीडी, और होपफुली सब श्रोताओं के पास ये सीडी पहुँच जाएगी। और ये और भी मेरा जो लास्ट एल्बम है, मेरे गुरु, वो किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग के डिवाइन शॉप में मिल सकता है। वो 14 गाने हैं जो मेरे गुरु के लिए मैंने लिखे हैं खुद और कंपोज किए हैं। और तो बस थैंक यू सो मच, आपने जो भी लव्स मेरे लिए बोले हैं, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ।
थैंक यू सो मच हेमा जी, आपने समय निकाल कर हमसे इतनी सारी बातें की, और जाते जाते बस एक कोई अपना पसंदीदा गीत आप हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए, और उसी गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को फिर वाइंड अप करें। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत 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 शुक्रिया आपको, आपने मुझे आपके इस बढ़िया शो पे इनवाइट किया। मेरी बात मेरे प्यारे श्रोताओं को पहुंचाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से, और ऑलवेज विल रिमेन। और जो गाना गाऊंगी सबके लिए, वो हमेशा होता है मेरा चक दे इंडिया का बादल पे पाँव है, लेकिन इस बार मैं जो श्रोताओं को बहुत पसंद है मेरा गाना, वो गाऊंगी। वो है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना 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 है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। बहुत सारा प्यार सबको, भगवान आप सबको बहुत खुशियां दे, और ये खुशियां जो है अपने आपस में सबको बांट दीजिएगा, एवरीबडी। और एज मेरे गुरुदेव कहते हैं, एवरीबडी बिलोंग्स टू एवरीबडी, हम सब एक हैं, तो एक दूसरे को प्यार बांटते चले, लॉट्स ऑफ लव।
इश्क सोना है,
सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना सोना सोना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना है। इश्क चांदी है, इश्क सोना है,
इश्क चांदी है, इश्क सोना है,
सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना सोना सोना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना
है जवानी तो इश्क होना है।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।